नमस्कार मित्रों, मोबाइल एन से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है, आप कैसे वोट करते हैं, कोई अपना उम्मीदवार कैसे चुनता है। यह कोई रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। भारत का मतदाता अक्सर चुनाव विश्लेषकों और एग्जिट पोल वालों को चकित करता आया है। आज हमारे साथ पूर्व सैनिक एवं इंडियन वेडनर्स ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव प्रदीप कड़स्कर सर जुड़े हुए। सर, मोबाइल एन पे स्वागत सर आपका।
धन्यवाद और जय हिंद है और समस्त श्रोताओं को जय हिंद बोलता हूँ।
सर, एक मतदाता के रूप में किस तरीके से एक मतदाता मतदान करने से पूर्व क्या सोचता है सर?
सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। आप शुरू कीजिए।
सर, एक मतदाता के रूप में एक मतदाता क्या सोचकर मतदान करने जाता है?
मतदाता अपना ये सोच करके जाता है कि मैं एक निष्पक्ष क्या बोलते उम्मीदवार को मतलब वोट करूंगा अपना, ये सोच करके जाता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि बीच बीच में उसको प्रलोभन टाइप के जो लोग होते हैं वो प्रलोभन देकर के उसको बहला फुसला कर रख देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता को ऐसे प्रलोभन के चक्कर में नहीं आना चाहिए और निष्पक्ष रूप से अपना वोट करना चाहिए और निष्पक्ष रूप से जाना चाहिए।
जी, एक मतदाता जब घर से बाहर निकलता है तो वो क्या किसी विशेष विचारधारा या राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा को कितना जान पाता है, कितना समझ पाता है और उसके बाद मतदान करता है?
ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है। लेकिन मेरा मानना है कि एक निष्पक्ष रूप से मतलब वोटिंग करना चाहिए और उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि ये कैसा है, इसका परिवार कैसा है, ये जनता की मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है। और कहना चाहूंगा जमीनी लेवल का जो उम्मीदवार होता है, जमीनी लेवल में जिसकी जुड़ाव होता है पब्लिक के बीच में, ऐसे उम्मीदवार को वोटिंग करना चाहिए।
एक मतदाता के रूप में स्थानीय विकास हो, राष्ट्रीय विकास हो या राज्य विकास हो, कितना अहम देखते हैं एक मतदाता?
इसके बारे में तो कहना चाहूंगा, आजकल तो प्रलोभन और जो जुमलेबाजी होती है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे सभी, मतलब एक्चुअली क्या है कि ये पार्टी बेसिस पे आ जाता है। जनरली क्या होता है, पार्टियों के पास में बहुत पैसा होता है, अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। मुझे तो इस बारे में तो मैं एक राय भी देना चाहूंगा कि ये जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं इनसे उतना अमाउंट क्या बोलते हैं निर्वाचन आयोग ने ले लेना चाहिए और निश्चित जगह होल्डिंग और बैनर लगाना चाहिए निर्वाचन आयोग ने, और इनको सिर्फ बोलने का मौका दिए, मतलब ये अपने मन से बोले और घर घर जाकर के प्रचार करें। यही मैं बोलना चाहूंगा, ये जो अनाप शनाप अननेसेसरी पैसा खर्चा करता है उम्मीदवार लोग, ये उम्मीदवारों का पैसा जितना मतलब निर्वाचन आयोग निश्चित करती है उतना इनसे लिया जाए और अपने हिसाब से अलग अलग गांव में 10 जगह 20 जगह होल्डिंग लगाया जाए, ये निर्वाचन आयोग ने करना चाहिए, ना कि ये उम्मीदवारों ने करना चाहिए। उम्मीदवारों को तो मौका ही नहीं देना चाहिए कि अपनी तरफ से होल्डिंग लगाए। ये देखा गया है कि मतलब लगभग 5 लाख का मतलब खर्चा बताते हैं तो ये 50-50 लाख खर्चा कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है और इस टाइप से नहीं होना चाहिए। इस पर अंकुश लगाने के लिए एकमात्र तरीका है कि उम्मीदवार से निर्वाचन आयोग पैसा ले और अपने हिसाब से होल्डिंग लगाए, सिर्फ इनको घर घर जाकर के मतदान मांगने का ही अधिकार होना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा।
जी सर। सर, एक मतदाता चाहे राष्ट्रीय नीति हो, राज्य नीति हो या अंतर्राष्ट्रीय नीति हो, कितना अहम देखता है और फिर मतदान करता है? सर,
आजकल देखा गया है प्राय प्राय कि मतदाता जो है बहकावे में आ जाता है। ये जो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं इन लोग,
जी
ये मैनिफेस्टो निकालने के बाद में इन पब्लिक को और जनता को ऐसा लगता है कि यार अपन ने इस व्यक्ति को वोट करना चाहिए, तो इन मैनिफेस्टो में हमारे जाति या धर्म के बारे में लिखा है, तो वो बंदे उधर मतलब बिगड़ जाते हैं और वो वोटिंग वैसा करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मैनिफेस्टो जो निकलते हैं ये क्या ये मैनिफेस्टो 100% पूरे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये सिर्फ इलेक्शन के पहले निकाला जाता है और कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद में वो सब मतदाताओं को भूल जाते हैं। मैं एक चीज उसमें और बताना चाहूंगा ये इलेक्शन के 1.5 महीने या 2 महीने या 1 महीना पहले ही मतलब जनता के बीच में आकर के हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, और फिर बाद में 5 साल तक जनता उनके पैर छूती है, पैर पकड़ती है, तब भी उनका काम नहीं होता, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ये दबंग टाइप में काम होता है
जी। एक लोकतंत्र में चाहे प्रधानमंत्री का मत हो या फिर एक मजदूर का मत हो, दोनों का ही मूल्य समान है, उसके बावजूद भी एक मतदाता एक इस राजनीतिक पार्टियों की कितनी विचारधाराओं को समझ पाता है और फिर मतदान करता है सर?
इसके लिए एक उदाहरण आदरणीय नितिन गडकरी जी ने दिया है कि यदि हम किसी की शादी करते हैं तो शादी करते समय यदि यदि लड़की की शादी करते हैं तो उसके लिए वो वर लड़का कितना योग्य है, कितना अच्छा है, क्या कमाता है, क्या नहीं करता, ये देख करके यदि हम लड़की की शादी उस जगह करते हैं तो उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को क्यों ना हम उस तर्ज पर देखते हैं। तो वो तो आदरणीय नितिन गडकरी जी ने बहुत सही कहा है, लेकिन यदि इस चीज को हर वोटर अपने संज्ञान में ला करके ऐसा यदि फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सही और शानदार क्या बोलते हैं उम्मीदवार चुन करके ऊपर जा सकता है।
जी सर। सर एक मतदाता के रूप में अगर कोई प्रतिनिधि अगर उनके घर पर आकर पैर छूले या फिर किसी रास्ते में आकर किसी जन प्रतिनिधियों के बहकाव में आ जाता है तो वो किस रूप में कैसा मतदान करेगा, क्या उसको इन प्रत्याशियों की सहानुभूति आड़े आएगी और फिर मतदान करेगा, कितना सही देखते सर?
हाँ, इस एंगल पे यदि देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है, कई जरूरतमंद ऐसे होते हैं, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, मैं एक सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, लगभग 2016 से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, आपको बताना चाहूंगा। तो मैंने देखा है कि जैसे किसी का एडमिशन की प्रॉब्लम होती है, किसी के स्कूलों की प्रॉब्लम होती है, फीस की वगैरह की, तो ये इस तरह मतलब पब्लिक डाइवर्ट हो जाती है, यार मेरा तो मतलब बच्चों की फीस उन्होंने जमा कर दी या मेरा बच्चे का एडमिशन वो करा देंगे, तो इस चीज के जो लुभावने चीजें होती है ये डाइवर्ट कर देती है वोटर को। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वो एक यदि सामाजिक क्षेत्र में जो कोई काम करता है तो हम तो निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमको किसी से वोट मांगना या वोट मांगना, हमारा राजनीतिक क्षेत्र कहीं भी नहीं जाता, हम राजनीति से दूर ही है और कभी इसमें आना भी नहीं चाहेंगे, भविष्य की बात है फिर आगे क्या होता क्या नहीं। लेकिन बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है ये सारी चीजें, और ये जो भी मतलब आचार संहिता जब लगती है तो उसके बाद में बहुत सारी चीजों पर अंकुश लग जाना चाहिए। हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए जो हम कपड़े और कंबल वितरण का काम किया करते थे दिवाली में और सर्दी के सीजन में, वो हम नहीं कर पा रहे इस साल, क्यों इस कारण नहीं कर पा रहे, क्योंकि आचार संहिता है, कहीं ना कहीं उंगली हमारे तरफ भी उठेगी, ये सोच करके हमने ये प्रोग्राम को इस साल हमने स्थगित कर दिया है।
जी सर। सर प्रदेश में 22,36,000 से अधिक मतदाता पहली बार मतदान करने वाले हैं जो 18 वर्ष से ऊपर है।
जी जी।
इनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
हाँ, इनके लिए तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एक सच्चाई का साथ दे, जो सच्चा व्यक्तित्व अपने आप में रखता है, और हम यदि किसी विधायक को यदि चुनते हैं तो हम डायरेक्ट सीधा उस विधायक से मतलब बात कर सके, ऐसे प्रतिनिधि को हमने चुन करके देना चाहिए, और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करे, ऐसा प्रतिनिधि हम लोगों ने चुन करके देना चाहिए।
जी। ये थे प्रदीप परस्कर सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर आप कैसा वोट करते हो इस विषय पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। प्रदीप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत आभार और धन्यवाद श्रीमान, और सभी को जय हिंद
जी। मोबाइल वाणी सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।